मेरे प्रिय नौजवान दोस्तों नमस्कार। आज 30 मई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब कुछ दिनों तक हम लोग कुछ इसी पैटर्न को लेकर के चल रहे हैं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन पर हम बात करेंगे। और मैं इसे तो सच पूछे इस रूप में भी देखता हूं कि अगर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक्सक्लूसिव कुछ सुनने को मिल जाए 10-15-20 मिनट तो ये बहुत बड़ी बात है। कम से कम एक टॉपिक तो हमारा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो ही जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा एक नए पैटर्न को लेकर चल रहे हैं और मुझे यकीन है कि इससे पहले के जो दो डेली ऑडियो लेक्चर आप लोगों ने सुने होंगे उससे जो आपको महसूस हुआ होगा डेफिनेटली आप उस भी इसके पक्ष में होंगे। बीच बीच में ऐसे दौर आते हैं तो चलिए, परिवर्तन भी अपने आप में कहीं ना कहीं सुखद ही होता है, तो इसे आप परिवर्तन ही मान लें, जिसे आप टेस्ट चेंज करना कहते हैं। तो मित्रों, आइए आज के डेली ऑडियो लेक्चर में अब हम एक नए विषय पर बात करते हैं और यह नया विषय ऐसा है जो सामान्यतः मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने कभी डेली ऑडियो के न्यूज एनालिसिस में भी इस तरह के विषय को लिया हो, क्योंकि यह विषय ऐसा है जो समाचार पत्रों में या समाचारों में ज्यादा आता नहीं है लेकिन एग्जामिनेशन में आता है। अगर आप पिछले साल के अनसॉल्व पेपर उठाकर देखें जनरल स्टडीज मेंस के, तो उसमें तो जल संसाधनों पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं। पेपर 1 में भी पूछा गया है, पेपर 3 में भी पूछा गया जल संसाधन। तो जो वाटर रिसोर्सेज है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखिए, जब नदियों पर होता है तो समाचार में आता है ना, नर्मदा नदी, गंगा नदी, इन पर खबरें बनती हैं। तो खबरें कौन सी नहीं बनती, अंडरग्राउंड वाटर पर भी खबरें बन जाती हैं। जो खबरें नहीं बनती हैं वो है महासागरीय जल पर, ओशन जो महासागर हैं, क्या उनका जल भी प्रदूषित हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जो पता नहीं किस वजह से लेकिन वो छूट जाती हैं। जैसे अंतरिक्ष में दुनिया भर का कचरा इकट्ठा हो रहा है, संकट पैदा हो गया है, एंटार्क्टिका के क्षेत्रों में हो गया है, सच पूछे तो एवरेस्ट तक पर हो गया है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले अब इतने ज्यादा यात्री हो गए हैं, पर्वतारोही हो गए हैं कि वो जाते हैं कुछ ना कुछ वहां छोड़ करके चले आते हैं और चूंकि वो एरिया पूरा ठंडा है, बर्फीला है, तो वो चीजें वहां ताजी ही बनी रहती है, जैसे कि वो फ्रिज में रखी हुई हो, खराब ही नहीं होती है, सड़ती ही नहीं, तो चीजें पड़ी रह जाती हैं। तो वहां तक कचरा पहुंच गया है। तो दोस्तों, उसी बात को ध्यान में रख करके मैंने आज के लिए जो विषय चुना है वो है महासागरों का प्रदूषण। नया विषय है तो आइए इस पर हम थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप में बात करते हैं। शुरुआत में 2 तथ्यों से करना चाहूंगा मित्रों, जो बड़े जनरल नॉलेज का और बड़ा सामान्य, जो बड़े सामान्य से तथ्य हैं। पहला तो यह कि आप जानते हैं कि पूरी की पूरी हमारी धरती पर जो जल है उसका परसेंटेज 71 है। धरती तो 29% है, स्थल क्षेत्र जो है वो 29% है और जो जल क्षेत्र है वो 71% है, 71%, मतलब पृथ्वी पर जल ज्यादा है। और ये जो जल ज्यादा है इसमें अंडरग्राउंड वाटर बहुत कम है। जो सबसे ज्यादा जो जल है वो आप यूं कह लीजिए कि समुद्र में ही है, ग्लेशियर के फॉर्मेट में थोड़ा सा है, अंडरग्राउंड थोड़ा सा है, अंडरग्राउंड भी काफी है। अंडरग्राउंड वाटर तो एक ऐसा वाटर होता है जो एक शुद्ध जल होता है जो हमारे सीधे पीने के काम आता है, समुद्र का पानी तो पीने के काम नहीं आता लेकिन इसकी दूसरी बहुत उपयोगिता है। तो जो 70% हमारी धरती के हिस्से को बना रहा है अगर वो प्रदूषित है तो डेफिनेटली एक बहुत ही गंभीर मुद्दा होना चाहिए। कभी कभी फिर यह भी लगता है फ्रेंड्स कि जो एक समुद्र मंथन की कथा जो भारतीय माइथोलॉजी में है कि समुद्र को मथा गया और उसमें अमृत और विष दोनों निकला है ना, फिर विष को भगवान शिव ने पी लिया था जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया। तो अगर आज समुद्र को मथा जाए और अगर उसमें अमृत और विष दोनों निकले तो फिर उस विष को पीने वाला कोई है, और अगर कोई उस विष को नहीं पिएगा तो समुद्र के जल का क्या हाल होगा। यानी कि हमारे लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो मिथक है, वो जो कथा है या सच भी हुआ हमें नहीं मालूम है, कि वो जो कथा है वो भविष्य के लिए एक संदेश दे रही है कि देखिए समुद्र को संभालिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि समुद्र हमारे लिए बहुत बड़ा समृद्धि का भंडार है। समुद्र से ही ऐरावत हाथी निकला था, समुद्र से ही चंद्रमा निकले थे, समुद्र से ही लक्ष्मी देवी निकली थी, ये सब समुद्र से ही निकले हैं। तो संपत्ति का कितना बड़ा खजाना समुद्र में है, लेकिन उस समुद्र के साथ हम कर क्या रहे हैं। एक विवेकहीन व्यवहार। मित्रों, मैं आपको एक छोटे छोटे से अनुभव की बात बताना चाहूंगा। वैसे तो देखिए, हम सब समुद्र के किनारे जाते हैं, तो आप मुंबई चले जाएंगे तो वहां आपको अरब सागर मिल जाएगा, है ना। आप गोवा चले जाएंगे वहां समुद्र मिल जाएगा, कलकत्ता चले जाएंगे वहां आपको बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी, और जब हम शहरों के किनारे के समुद्र के तटों पर जाते हैं तो हमें वहां गंदगी दिखाई देती है, दूसरी गंदगी दिखाई देती है। फिर हम सोच लेते हैं, अरे यार समुद्र इतना बड़ा है, अंदर से अंदर चले जाएं तो साफ ही होगा, क्योंकि वहां तो लोग पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा है नहीं। ये जो हम किनारे गंदगी डाल रहे हैं, ये समुद्र में कहां कहां पहुंच रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, ये 2011 की बात है, जब मेरी पत्नी और मैं लॉस एंजलिस से वैंकूवर के लिए, कैनेडा के लिए 10 दिन के स्टीमर पर टूर में हम लोग गए थे। 10 दिन तक हम लोग समुद्र की ही सैर करते रहे थे, समुद्र की यात्रा करते रहे थे। वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र, अलास्का का जो क्षेत्र है, क्या खूबसूरत ग्लेशियर दिख रहे हैं आपको, पर्वत दिख रहे हैं, ऊपर आकाश है, नीचे पानी है, इसके सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप ताज्जुब करेंगे कि वहां भी हम लोग देख के आश्चर्य में पड़ जाते थे कि कचरा दिखाई दे जाता था। अब ऐसा तो नहीं था कि मुंबई के अरब सागर में जो कचरा दिख रहा है उस तरह का कचरा दिखाई देगा, लेकिन बीच बीच में वो कचरा दिखाई देता था। और वो कचरा भी क्या, चलिए एक तो लकड़ी वगैरह है, वो तो अब उन्हीं के हिस्से ही है, आपको प्लास्टिक की बोतलें दिखाई दे जाएंगी, इस तरह की चीजें दिखाई देती थी, प्लास्टिक के टुकड़े दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि प्लास्टिक के साथ दिक्कत यह है ना कि एक बार अगर प्लास्टिक आपने डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो मतलब वैज्ञानिकों का कहना है कि उसे खत्म होने में 400 इयर्स लग जाते हैं, 400 इयर्स। और ये स्टडी किया गया है कि समुद्र की सतह पर अब प्रति एक वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 13,000 प्लास्टिक के टुकड़े, औसतन 13,000 पीसेज ऑफ प्लास्टिक एवरेज इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोच करके देखिए, यह हालत हो गई है समुद्र की। और कुछ हिस्से तो बिल्कुल ऐसा बन गया है जैसे कि प्लास्टिक ने समुद्र को ढक लिया, कुछ हिस्से उसके एकदम ऐसे ही हो गए हैं। अब होता क्या है कि ये जो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो इन्हें मछलियां खाती हैं। अब मछलियां खा ली तो मछली के पेट में तो पचेगा नहीं है, और उन मछलियों को हम खाते हैं और वो फिर हमारे पेट में पहुंचते हैं। तो कल्पना कीजिए कि जिन प्लास्टिक को हमने फेंका था वो फिर जहरीले रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, जहरीले बनकर के हमारे सामने आ रहे हैं और हम ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आपको मालूम है कि विकासशील देशों में प्रोटीन का जो सबसे बड़ा जो सोर्स है वो ये मछलियां ही हैं, और हम कैसी मछलियां खा रहे हैं ये हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या हो रही है दोस्तों, समुद्र के साथ, समुद्र के किनारे बहुत से शहर बसे हुए हैं, बहुत से उद्योग भी लगे हुए हैं। जो प्रदूषण नदियों का होता है वो समुद्र का भी उसी पैटर्न पर होता है, वो बिना संशोधित किए हुए पानी उसमें डाल रहे हैं, दुनिया भर का कचरा डाल रहे हैं, तो समुद्र एक तरीके से कचरा गाह बनता चला जा रहा है ना, जहरीला पानी उसमें डाला जा रहा है। इन जहरीले पानी और इन सब का असर क्या हो रहा है, देखिए समुद्र में हमें पानी दिखाई देता है लेकिन पानी समुद्र का जीवन नहीं है। जो समुद्र का जो जीवन है दोस्तों, वो समुद्र में जो प्रवाल भित्तियां होती, जो कोरल्स होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो वो वहां का जीवन है। हालांकि पूरा कंपोनेंट कोरल का समुद्र में अगर पूरा परसेंटेज निकाला जाए तो बहुत कम है, निग्लिजेबल है, 0.1%। प्रवाल भित्तियों की उपस्थिति 0.1% ही है, लेकिन जो समुद्री जीव हैं वो 25% सिर्फ इन कोरल पर निर्भर कर रहे हैं। और देखने में इतने खूबसूरत होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कोरल, आपने कभी फिल्मों में देखा होगा या टीवी सीरियल में भी, ज्योग्राफी वगैरह पर कभी कभी उनके दृश्य दिखाए जाते हैं, बड़े प्यारे और बड़े सुहावने दृश्य होते हैं। अब जब ये जहरीला पानी उसमें जा रहा है तो वही जो प्रवाल भित्तियां हैं इनको बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, समुद्री जीव मर रहे हैं, प्रवाल भित्तियां मर रही हैं, और अगर प्रवाल भित्तियां मर रही हैं तो मान करके चलिए कि मछलियां भी मरेंगी जहरीला पानी पीने से, और दूसरी तरफ इन प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने से। तो आप देखिए कि कितना एक चैन रिएक्शन जैसे किसी भी चीज का होता है, कि एक चीज एक जगह हो रही है लेकिन करते 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 वो कहां पहुंच रही है वो दिखाई देता है, इस रूप में हमारे सामने आता है। मित्रों, ये तो सीधे सीधे हैं जो हमें दिखाई देते हैं कि हम कैसे प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक है इसका एक बहुत बड़ा कारण जो प्रदूषण का बता रहे हैं वह है खेत के पानी का समुद्र में जाना। इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, बकायदे इस पर स्टडीज हुई हैं और उस स्टडीज में ये पाया गया है कि चूंकि अब हम खेतों में खाद्यान्न के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करने लगे हैं, नंबर वन, दूसरा कीटनाशक दवाइयां पेस्टिसाइड्स इसका लगातार इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, भयानक रूप से इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आपने देखा है कि किस तरह से सरकार भी कार्बनिक खेती को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, स्वास्थ्य के लिए भी ये सीधे सीधे हानिकारक है। लेकिन चलिए, अभी तो हम समुद्रीय जल की बात कर रहे हैं, तो जो खेत का पानी है, खेत में पानी आ रहा है, फिर वो पानी बह करके नदियों में जा रहा है, गड्ढों में जा रहा है, गड्ढों से नदियों में जा रहा है और नदियों से वो समुद्र में जा रहा है। तो एक तरीके से समुद्र में जाने आने वाली नदियां समुद्र के लिए गंदे नालों का काम कर रही हैं और पूरे के पूरे इस पेस्टिसाइड्स को वहां डाल रही हैं। और दोस्तों, ये अध्ययन में पाया गया है कि बंगाल की खाड़ी और मुंबई के आसपास में समुद्र में कई ऐसे क्षेत्र विकसित हो चुके हैं, ऐसे एरियाज बन गए हैं जहां समुद्री जीवन का अस्तित्व ही नहीं रह गया है, मतलब लाइफ खत्म हो गई है, डेड हो गई है जहरीलेपन के कारण। और पूरे के पूरे जो महासागर है, हमारे दुनिया भर के जितने भी समुद्र हैं उनमें एक दो नहीं बल्कि 405, ये मैं आपको जानबूझकर कुछ आंकड़े बता रहा हूं जो आपको नोट भी कर लेने चाहिए। होता क्या है ना कि जब हम अपनी बात में आंकड़े डाल देते हैं, कोई रिपोर्ट डाल देते हैं तो थोड़ा सा उसका वजन बढ़ जाता है, अदरवाइज तो फिर वो जनरल स्टडीज के तहत हम एक कॉमन बातें कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा विशिष्ट बन जाता है और एग्जामिनर को ये इंप्रेशन मिलता है कि नहीं, स्टूडेंट सतर्क स्टूडेंट है, वो अच्छे से तैयारी कर रहा है, इस टॉपिक पर इसने पढ़ा है। अदरवाइज तो देखिए, अगर आप समुद्र पर मेरा ये डेली ऑडियो लेक्चर नहीं भी सुनेंगे तब भी कुछ ना कुछ तो लिख ही आएंगे अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो, क्योंकि प्रदूषण के कारण वही है जो नदियों के प्रदूषण के कारण है और नदियों के प्रदूषण के बारे में आप जानते ही हैं, बस प्रवाल भित्तियां वगैरह जो कुछ नए हैं वो आपको जरूर थोड़ी सी चीजें नई लग सकती हैं। जैसे मैंने एक आपको आंकड़ा बताया कि प्रति वर्ग किलोमीटर 13,000 प्लास्टिक के टुकड़े हैं, ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है, आप इसे नोट कर सकते हैं। समुद्र में प्रवाल भित्तियों की जो मैंने उपस्थिति बताई 0.1%, लेकिन जो समुद्री जीव है उनका 25% केवल इन्हीं पर निर्भर करता है, ये एक मैंने आपको जानबूझकर आंकड़ा दिया है। फिर एक आंकड़ा मैं अभी बता रहा हूं कि पूरे के पूरे दुनिया के जो समुद्र हैं उसमें लगभग 450 ऐसे क्षेत्र विकसित हो चुके हैं जहां कोई जीवन नहीं है और अगर इनको नियंत्रित नहीं किया गया तो मित्रों ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं और ये लगातार बहुत तेजी के साथ फैलते चले जाएंगे। और इसको लेकर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्पेशली समुद्रीय प्रदूषण को लेकर के अलग से बहुत गहरा अध्ययन किया है दोस्तों, बहुत ही व्यापक अध्ययन किया है और उस अध्ययन में उसने ये 405 क्षेत्र जो विकसित किए गए हैं आइडेंटिफाई किए हैं और उसने इस आइडेंटिफिकेशन के साथ ही साथ यह भी बताया है कि समुद्र में जो लवण की मात्रा है, सैलिनिटी की जो मात्रा है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, अम्ल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसका कारण यह है कि वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो उसका असर यह हो रहा है कि समुद्र में ऑक्सीजन का स्तर कम होता जा रहा है। आप कल्पना करके देखिए कि अगर समुद्र में ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा तो जो समुद्र में जो जीवन है, फिर चाहे वो मछलियां हों या दूसरे जीव जंतु हैं, उनका क्या होगा, बट नेचुरली कि उन पर भी सीधा असर पड़ेगा। और इसी के कारण जो हम 405 स्थानों की बात कर रहे हैं कि 405 ऐसे क्षेत्र विकसित हो चुके हैं वो इसी कारण है। तो मित्रों, ये मैंने कुछ आपको तथ्य बताए हैं जो समुद्री प्रदूषण को लेकर हैं और इसमें खासकर जो मैंने तथ्य बत दिए हैं उन तथ्यों पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। बाकी तो सामान्य सी चीजें हैं, वो आप भी लिख लेंगे और मेरा सजेशन है कि आप उन्हें अलग से नोट कर लें ताकि एक फ्रेश आपके दिमाग में वो बने रहे। मित्रों, इसी के साथ ही मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, एक अच्छी बात है और सच पूछिए तो उसी बात तथ्य को ध्यान में रख करके उसके कर्टन रेजर के रूप में मैंने ये डेली ऑडियो लेक्चर आपके लिए तैयार भी किया है कि संयुक्त राष्ट्र का समुद्री सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र का जो समुद्री सम्मेलन है ये 5 से 8 जून को होने जा रहा है, अभी 5 से 8 जून को डेफिनेटली ये सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। उस समय और भी आर्टिकल्स कुछ आएंगे, कुछ तथ्य आएंगे, कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। ये सम्मेलन होगा 5 से 8 तक, 4 दिन का सम्मेलन है और उस समय भले ही छोटी न्यूज के रूप में क्यों ना आए, हो सकता है कि बहुत बड़ा रूप ये न ले पाए, डिपेंड करता है उस समय और क्या घटनाएं होती हैं, तो भले ही वो छोटे न्यूज के रूप में भी आए लेकिन आपको अपडेट करने के लिए वहां से चीजें मिल जाएंगी। कम से कम एक फैक्ट तो यह ही है कि सम्मेलन होने जा रहा है, कुछ न कुछ नई बातें आएंगी, नए प्रस्ताव पारित होंगे, नए संकल्प लिए जाएंगे, नई चिंताएं जाहिर की जाएंगी, तो आप उसे ऐड कर लें इसके साथ तो आपका यह टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि यह टॉपिक किसी भी मायने में कम महत्वपूर्ण है, नॉट एट ऑल फ्रेंड्स। जिस तरीके से सिविल सर्विस में पिछले साल जल संसाधनों को लेकर के इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखते हुए अगर समुद्री प्रदूषण पर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो तनिक भी अचंभे की बात नहीं है। तो मित्रों, अब इसी के साथ ही मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।